जब तक सृष्टि खड़ी रहे तब तक सारी दुनिया का परमात्मा बन तुझे मालक बना दूं, क्या लगे नहीं चाहिए? कहने लगे अच्छे तुझे स्वर्ग में ले चलूं अपने साथ, कहते नहीं चाहिए। कहते अच्छा तेरे पापों से छुड़ाकर वैकुंठ में जहां मैं रहता हूं वहां तुझे मैं अपने साथ ले चलूं, कहते नहीं चाहिए। पढ़ोगी फिर क्या चाहिए? कहने लगे ये बस मेरा दोबारा जन्म ना हो, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वैकुंठ और स्वर्ग के सुख भोगने के भी बाद आदमी को जन्म लेना पड़ता, मुक्ति नहीं मिलती। लोग समझ लेते हम स्वर्ग में चले जाएंगे वैकुंठ में चले जाएंगे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। गीता का चौथा अध्याय, इसलिए साथ साथ बता रहा हूं, इतनी मोटी गीता कहां पढ़ोगे? चौथा अध्याय सवेरे घरों में खोल करके देख लेना। भगवान ने लिखा है कि गीता के अंदर ये स्वर्ग और वैकुंठ ऐसे है जैसे मानो पैसे वाला गर्मी से बच के हिल स्टेशन चला गया और 2 महीने वहां रेस्ट करने के बाद फिर आ गया अपनी कमाई करने के लिए। इसी तरह से जिन्होंने अच्छे कर्म कर लिए वो अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए, स्वर्ग और वैकुंठ एक हिल स्टेशन है जहां दुख नहीं है बस, और वो समय जब बीत जाता है फिर मनुष्य धारण करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन ने क्या मांगा कि प्रभु मुझे तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे करोड़ पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भोगने के बाद फिर आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा मेरे भाव सागर से पार। तो क्या कहा? तो भाई फिर वो मैं नहीं, परोगी तक वो परमात्मा मैं नहीं, उत्तमा पुरुषस्य त्वे अन्या अपरि, या तो गीता में ना लिखा हो। अब भाई लिखा हुआ तो बताना पड़ेगा, ये तो नहीं है कि अब मैं जो गीता में लिखा है वो ना बताऊं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम गीता वाले को भगवान नहीं कह रहे, वो कह रहे मैं भगवान हूं, लेकिन किस चीज का भगवान हूं? इस दुनिया का। हम भी मानते हैं कि इस दुनिया का परमात्मा कौन है? विष्णु भगवान। कौन कहता है? कौन प्रणाम ही नहीं मानता? हम मानते हैं तभी तो सुना रहे। लेकिन जिनको ये दुनिया नहीं चाहिए, जैसे बाजार लगा हुआ है, अब बाजार में हजारों दुकानें हैं, कोई हलवाई की है, कोई दुकान मोची की है, कोई किसी की है, किसी की है। मुझे चाहिए हीरे और मैं जाकर के एक हलवाई की दुकान पे खड़े हो जाऊं और हलवाई तो धड़ाधड़ समोसे दे रहा, बर्फियां दे रहा, सब सामान दे रहा, उसको जाके मैं कहूं अरे भाई मुझे भी 2 हीरे अंदर से निकाल के दे दे, तो वो मुझे क्या कहेगा? बोली सोचेगा कोई पागल है बेवकूफ, उसे जब पता मेरी दुकान तो वही हलवाई की है तो मेरे पास हीरे कहां से रखे? भगवान ने, भगवान से वो वस्तु अर्जुन ने मांग ली जो अर्जुन उस भगवान के पास है नहीं, वो भगवान कहां से लाके दे दे? अब ये चीज किसी को कह दे तो कह चलो जी हमारे तो भगवान की निंदा होगी। अरे भाई निंदा क्यों होगी? वो कह रहे मैं भगवान हूं, इस माया का करोड़ पुत्र मांग, सारी दुनिया का राज मांग, स्वर्ग मांग, वैकुंठ मांग दे सकता हूं, लेकिन जो चीज तूने मांगी है वो देने की शक्ति मेरे पास है नहीं, तो दू कहां से? अब इसका यह मतलब तो नहीं कि भगवान की निंदा होगी या गीता की निंदा होगी। पर ये 15वां अध्याय और 16वां श्लोक भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन उत्तमा पुरुषस्य त्वे अन्या, अन्या मैंने वो जुदा है, वो मैं नहीं, वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्म है जिसके पास सिर्फ शक्ति है कि वो हर प्राणी के अवगुणों को माफ कर सकता है और भाव सागर से पार कर सकता है। मैं किसी के पापों को भी माफ नहीं कर सकता, जैसा कोई करेगा उसको वैसा फल भुगतना पड़ेगा। रामायण को पढ़ो, पहली जुबई कहती है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल चक। ये शक्ति किसके पास है? केवल एक प्राणनाथ पार ब्रह्म क्षातीत के पास है, जो सबको अवगुणों से भी बचा के भव से पार कर सकता है। हे अर्जुन वो केवल उत्तम पुरुष। अब वो उत्तम पुरुष ने 28वें कलयुग में आना, जिसको कोई बुद्ध निष्कलंक अवतार कहता है, कोई कलगी अवतार कहता है, और मुसलमान उसको आखिरुज़्ज़मा इमाम हिंदी कहते हैं, और बाइबल के अंदर उसी को सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। भाषा जुदी जुदी है, जैसे पार्लियामेंट की सूचना तो एक होती है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में छाप देता है, हिंदी वाला हिंदी में छाप देता है, उर्दू वाला उर्दू में छाप देता है। बस सूचना एक है कि 28वें कलयुग में वह पार ब्रह्मक्षातीत दुनिया में आकर के मनुष्य तन को धारण करेगा और परम धाम का ज्ञान लेके आएगा। उसकी पहचान यही, उस ज्ञान को सुन करके जो राम भगवान ने भी कहा, राम ना सके नाम गुण गाई, कहां लो कहूं मैं नाम बढ़ाई। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पर। अब क्या ये ग्रंथ झूठे? भाई जिनको झूठे लगते हो वो झूठे माने, हम तो सत्य मानते, हम तो इन ग्रंथों को सत्य मानते हैं, तभी तो प्रमाण दे रहे हैं। सब ग्रंथों ने पुकार पुकार के कहा कि कलयुग में ही वो आएगा और उसका नाम मिलेगा, हम नाम नहीं जानते। राम भगवान ने स्वयं कहा, राम ना सके नाम गुण गाई रामायण पढ़ो, लिखा है कि नहीं लिखा। इसी तरह मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह ताला का बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला 11वीं सदी में आवेगा, वो खुद आकर के अपना नाम, अपना अर्श यानी परमधाम और अपना स्वरूप वर्णन करेगा। वही बात ईसा ने कही, वही बात गुरु नानक देव जी ने कही। इन्होंने कोई जुदा जुदा ज्ञान तो नहीं कहा, हम लोगों ने जुदा जुदा बना लिया। सिखों ने अपना पंथ जुदा बना लिया, ईसाइयों ने अपना धर्म जुदा बना लिया, हिंदुओं के आगे कई हजार हो गए, मुसलमानों के भी 72 फिरके हो गए। किसी ने अपने गुरु को माना, किसी ने गद्दियों को माना, मुसलमान अपनी कब्रों को मान रहे हैं, कोई ख्वाजा शरीफ को मान रहा है, कोई मक्के मदीने को मान रहा है। इसलिए हर धर्म के अंदर ये चीजें हैं, लेकिन होने दीजिए, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। हमें मतलब केवल है कि मनुष्य तन मिला है भावसागर से, जिस ग्रंथ को भी देखना, कोई मेरा सज्जन, कोई साथी, कोई बहन, कोई भाई चाहे, जिस भी ग्रंथ से कुछ प्रमाण लेना चाहे, कुरान से, गीता से, भागवत से, और कोई वेदों को पढ़ने वाला हो तो ऋग्वेद का 3रा मंत्र जाके पढ़ ले। वेद भी बता रहा हूं, 4 वेद हैं, बड़े मोटे मोटे, कहां से जाके खोलो, 3रा मंत्र पढ़ लेना। उसका क्या लिखा है कि जो आदमी मनुष्य तन पाने के बाद अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचता नहीं, उससे नकिष्ट कोई प्राणी दुनिया में है ही नहीं। कि मेरी आत्मा का कल्याण हो के मुझे दोबारा जो है मनुष्य तन के गर्भ में जाकर के शरण आना पड़े। अब जब तक मनुष्य तन है मेरे साथियों, कोई संत कहे वो कहता रहे, मैं मानने को तैयार नहीं। पाप हर एक से हो, झूठ हर एक से बोला जाए, माया है, माया का रूप ही यही है जो हम लोग ये कुकर्म करते हैं। इनसे छुड़ाने के लिए शक्ति केवल एक उत्तम शक्षाती के बिना, जैसे सरे से सड़ा लोहा ले आओ और पारस के बिना हीरे के साथ रगड़ो, क्या हीरा सड़े हुए लोहे को सोना बना सकता है? मोती से रगड़ो, पारस से, पुखराज से रगड़ो, केवल एक पारस मनी एक ऐसी शक्ति है कि जरा सा सड़े से सड़े लोहे के साथ ऐसे रगड़ कर दो, सोना बना के रख दो। ये शक्ति सिर्फ पारस के अंदर और किसी के अंदर नहीं। यही चीज ग्रंथों में कही कि है अर्जुन, तू जो भावसागर से पार होने की शक्ति मेरे से मांग रहा है, वो मेरे अंदर नहीं, वो केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अंदर है। अगर तेरा संबंध आत्मा का उसके साथ हो जाए, अगर हो जाए, तब तू आवागमन के चक्कर से छूट के भावसागर से पार हो सकता है, अन्यथा नो ट्रीटमेंट, कोई इलाज ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। अब वो शक्ति कलयुग में आनी थी, वो आ गई। ये उन्हीं के मुखारविंद की लिखी हुई वाणी, ये हमारे किसी गुरु ने नहीं लिखी, ये हमारे किसी देवी देवता ने नहीं लिखी, ये किसी भगवान की लिखी हुई वाणी नहीं। वो स्वयं आए, उन्होंने जो फुरमान अपने मुखारविंद से वाणी फुरमाई, ये वो वाणी। अब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 3 तन धारण किए हैं और तीनों तनों में बैठ करके मैंने क्या क्या लीला की है, क्या क्या बातें कही है, तुम्हारे लिए कैसे इस दुनिया में से वो रास्ता निकाला है जिस रास्ते का पता शंकर भगवान को नहीं। इसीलिए कैलाश पर्वत पर बैठ के वो तपस्या करते हैं। उस ज्ञान का पता जो है वेदों में ब्रह्मा जी को नहीं, तभी तो नेति नेति करके गाया है। उस ज्ञान का पता विष्णु भगवान सृष्टि के नाथ को नहीं, जो अर्जुन को नहीं बता सके। उस ज्ञान का पता मोहम्मद साहब को नहीं, तभी उन्होंने कहा कि वो ज्ञान 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा, वो खुद बताएगा। उस ज्ञान का पता ईसा मसीह को नहीं, तभी उन्होंने कहा कि जब मेरे मरने के बाद 16.5 सदियां बीत जाएंगी तब अल्लाह ताला आएगा, वो ज्ञान खुद लाएगा। उस ज्ञान को जो व्यक्ति समझ करके अपनी आत्मा के द्वारा उसे नाता जोड़ लेगा, वो प्राणी भव से पर हर ग्रंथों के प्रमाणों के हिसाब से अब वो वाणी शुरू कीजिए, सुनिए, स्टार्ट करिए। उन्होंने हमारे लिए इस वाणी को केवल लाने के लिए 3 बार तन धारण, एक तन से काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे तन में बैठे, दूसरे तन से भी जब काम नहीं हुआ, अगर वो एक ही तन में बैठे रहते तो दुनिया में हाहाकार हो जाता। कहो भाई कौन आदमी है, कौन संत है जो 600 साल का उम्र है, चलो उसके दर्शन करें, दुनिया भीड़ ही लगा करके बैठ जाती। नहीं, ये प्रकृति उनके हुक्म से चल रही, हुक्म के हिसाब से एक तन से जितना काम लेना था लिया, वो पोशाक छोड़ दी, दूसरे तन में बैठे और दूसरे तन में बैठ करके बातें वही। अब जो पहचानने वाले होंगे वो ज्ञान से पहचान सकते हैं कि ये कहां से बोल रहा है, ज्ञान आया कहां से, ये ज्ञान हमें ले जा कहां रहा है, ये ज्ञान हमें किस तरफ खींच रहा है, ये हमें किसके साथ जोड़ रहा है, ये हमें कहां की पहचान करा रहा है। आज दिन तक हजारों धर्म, हजारों गुरु हैं, सब हैं, ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं। ना कोई गुरु गलत होता है, ना कोई धर्म गलत होता है, ना कोई ज्ञान गलत होता है। खरीदारी अपनी खरीद ग्राहक की होती, बाजार में हजारों दुकानें हैं, तो जिसको जो चीज चाहिए होती है वो उसी दुकान पर तो जाता है। अब जिसको ये बीमारी है ही नहीं, जिसको इस चीज की खरीदारी है ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है और आत्मा का मालिक मेरा जो है वो कहां पर है, तो उसको क्या जरूरत है ऐसे ज्ञान को सुनेगा, उनको माया चाहिए। यही चीज अर्जुन ने भगवान से कही कि भगवान आप कह रहे हो कि देवी देवता की पूजा ना करो, गीता में कहा कि कोई लोग भी देवी देवता की पूजा ना करो, ये भगवान कह रहा है। अर्जुन कह रहा है वाह भगवान, ये कैसे हो सकता है, सारी दुनिया देवी देवताओं की पूजा फिर क्यों करती है अगर इनको पास शक्ति नहीं। उन्हें कहा सुन अर्जुन, ये नहीं, ये जितने भी देवी देवता हैं इनको मैंने शक्ति दे रखी है, ध्यान के साथ सुनिए आप जरा एक एक चीज को, इनको मैंने शक्ति दे रखी दुनिया की व्यवस्था पूरी करना के वास्ते, इनको पूजा कराने का अधिकार नहीं। जाओ गीता पढ़ो, जिस भाई के दिल में शक आए वो गीता पढ़ गए, इनको पूजा कराने का अधिकार नहीं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया फिर दुनिया करती क्यों है, अगर इनको अधिकार नहीं है पूजा कराने का तो लोग क्यों पूजा करते हैं। कह लगे इसलिए करते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए, माया। दुनिया को क्या चाहिए, जिनके घर 18 साल हो गए शादी नहीं हुई, वो गुरु को क्या करेगा, वो धर्म को क्या करेगा, वो भगवान को क्या करेगा, उसको क्या चाहिए, लड़का। जिसके पास धन नहीं है, खाने को नहीं है, बच्चे 10 है, वो गरीब भगवान को क्या करे, चाटे, उसको पहले क्या चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। इसलिए है अर्जुन, जो लोग माया के अभियान के साथ, सुनिए गीता को सुनो क्या कह रही है गीता, कि जिन लोगों को केवल माया चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, मर्यादा चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, वो लोग भाग भाग करके इन देवी देवतों के पास पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा तो वो इनकी करते हैं पर इनको फल देने का अधिकार नहीं है, फल मैं देता हूं। दुनिया इस वास्ते इनकी पूजा करती है, लेकिन अब जिनको ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं, या मनुष्यतन मिला भाव सागर से पार होने के लिए है, भाई जिनको ये दर्द लगेगा ही नहीं, तो लाख ज्ञान ये सुना ले हम उनको, उनको क्या लगेगा, अजी होगा जब मरेंगे देखे जाएंगे, घर रोटी नहीं, लड़की की शादी करनी है, या भी किराया दिया नहीं, मकान का तनख्वाह बड़ी नहीं है, क्यों, उनको माया चाहिए। उनको ये समझ नहीं आई है अभी तक कि भाई ये झमेला जो हमारे शरीर के साथ लगा है ये उस दिन छूटेगा जैसे दिन 6 फुट का तख्ता दरवाजे पे आएगा, उससे पहले को नहीं छूटा। लाभ या तुम गल कई घर लोग अब तो क्या है, अब तो लाइबिलिटीज हमारी खत्म हो जाने वाली है, 2 बच्चे थे, शादी हो गई है, हम छूट गए हैं, अब तो हम भगवान का सुमरण करेंगे। कोई करता है? कोई करता है? कोई नहीं। जवानी में इतनी चिंता नहीं होती जितनी चिंता बुढ़ापे में हो जाती। बुढ़ापे में पोतों की चिंता, पोतियों की चिंता, मासियों की चिंता, दुनिया के खानदान की चिंता, क्योंकि आदमी बड़ा होता जाता है, परिवार बड़ा होता जाता है, चिंता बड़ी होती जाती है और माया में अधिक पड़ता जाता है। और जब आदमी नौजवान होता मस्त मलंग रहता है, पिताजी बैठे हैं वो जा रहे यार अभी क्या लेना, उस समय किसी को भगवान की चिंता नहीं। और जब जैसे बूढ़े होते हैं उस समय माया चारों तरफ इतनी बुद्धि के ऊपर छा जाती है कि एक समय भी, एक पल भी, एक सेकंड भी हमारे पास नहीं होता कि बैठ करके कभी सोचें यारों सारी दुनिया मर रही है और हमने भी एक दिन मरना तो है, तो मरने से पहले कभी ये तो सोच लें कि आखिर जाना कहाँ है। फिर वो समय था कि जब कोई नहीं ये बता सकता था कि परमात्मा का नाम क्या है, इसलिए दुनिया ने ये बताया कि निराकार है, कण कण में है, भगवान के हजारों नाम थे। नहीं, अब वो समय 28वां कलयुग आ गया और उन्होंने आकर के इस वाणी से जिसको लाने के लिए उन्होंने 3 तन धारण किए, उन्होंने कहा कि अब इसके द्वारा क्या करो, खुद भी देखो, अपने आप की पहचान करो और दूसरों को भी करवाओ। कैसे? टेलीफोन बैठा है यहाँ, एक लकड़ी का खोखा इंसान का बना, डायल का पता है, घुमाइए जरा, अमेरिका से बात कर लोगे कि नहीं? बोलो भाई, यहाँ बैठे हैं, डायल का पता हो और उनका कोड नंबर का पता हो अमेरिका का, 1 सेकंड लगता है घुमाइए तो हाँ से उधर से आवाज, हाँ हम बोल रहे हैं अमेरिका से, और ये इतना बड़ा रेट आपके पास टेलीफोन है, ये उससे ज्यादा काम करने वाला है, इसका डायल घुमाइए। उसके साथ जिसने यहां भेजा है ये ज्ञान दुनिया में था नहीं तो ऋषि मुनि मिला लेते। ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाके अपनी कंदराओं में अपनी हड्डियों को स्वाहा ऐसे नहीं किया। सृष्टि के नाथ शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे क्या कर रहे हैं, जिनके एक पलक के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो सकता है, इतनी शक्ति के मालिक भगवान है, लेकिन क्यों बैठे हैं वहां पर? माया से छूटने के वास्ते। जो चीज आज दिन तक दुनिया में नहीं थी मेरे साथियों, ये वो वाणी आज उस राज्य महाराज की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये आज शुरू हो रही है। और उन्होंने 3 तन जो धारण करके ये वाणी हमारे सामने पूर्ण ज्ञान हमारी आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा की पहचान कराने के लिए, परमात्मा हकीकत में कहते किसको है और वो हमें मिल कैसे सकता है, ये 3 स्वरूपों में 3 तनों में बैठ के उन्होंने जो काम किया उसका ये वृत्तांत हवाला ज्ञान शुरू होता है। अब इसको सुनिए। सबसे पहले अब आ गए, समय आ गया, सतयुग से ये चीजें जाहिर हुई थी कि कलयुग में वो आएंगे, तो ये भविष्य पुराण एक ग्रंथ का नाम, हमारे 18 पुराण हैं, उनके अंदर एक भविष्य पुराण ग्रंथ भी है, जिसको वो देखना हो सुबह देख सकता है, मेरे पास है यहीं पर। उसमें साफ लिखा है शिवजी महाराज ने अमर कथा जो सुनाई थी उसी को भविष्य पुराण कहते हैं। और वो सुनी किसने? उमा तो सुन ना सकी, और सुनी किसने? सुखदेव जी ने। एक अंडे का, तोते का अंडा था, कैलाश पर्वत के ऊपर पार्वती हमेशा बैठी, एक बिजिया नाम की बूटी होती है जिसको शंकर के मानने वाले भांग कहते हैं, भांग नहीं, भांग पीले रंग की होती है, गांजा हरे रंग की पत्तियों वाला होता है,
और बीजिया नाम की बूटी काले रंग की होती है। यदि कभी कश्मीर जाने का मौका मिल जाए, बद्रीनाथ की यात्रा जाने का मौका मिल जाए, अमरनाथ यात्रा पर जाने का मौका मिल जाए, तो पहलगाम के पास अरयू नदी बहती है, पुल पार करके पहला मोड़ मुड़ के दाहिने हाथ आपको भांग की तरह से पौधे खड़े हुए मिल जाएंगे, वो बीजिया बूटी है, लेकिन भांग से उल्टा असर करती है। भांग को रगड़ के पी लो, नशा कर देगी, बकवास करेगी, आदमी खाता चला जाएगा, 5 किलो भी खिला दोगे आटा खा जाएगा भांग के खाने वाला, उसका नशा होता है पता नहीं चलता। बीजिया नाम की बूटी में प्राकृतिक गुण है कि उसको निचोड़ देना पड़ता है, उसका रस फेंक देना पड़ता है, खाली जो उसके पत्तों का रस बाकी गोला सा रह जाता है उसको आप खा लीजिए। खाने के बाद आप लाख यत्न कर लेना कि मेरा परमात्मा के ध्यान चरणों में ध्यान ना लगे वो लगाइए। ये बिजिया का गुण होता है। भांग का जैसे गुण है ना नशा करना, वो नशा नहीं करेगी। उसके अंदर गुण क्या है कि आपके मन चित्त बुद्ध को एकाग्र करके आपने भी अपने परमात्मा जिसको भी आप स्मरण करते हैं, कोई जिसका भी भक्त है, हनुमान का है, राम का है, कृष्ण का है, जिसका भी इष्ट का है, वो जबरदस्ती आपके मन को एकाग्र करके उसके स्मरण में लगा देगी। शंकर भगवान जी उस बिजिया का सेवन करते हैं और 12 साल तक उमापास बैठ करके उसको रगड़ती है और एक ही मंत्र पढ़ती रहती, ओम नमो शिव हर हर, ओम नमो शिव हर हर, ओम नमो शिव हर हर। तो नारद भगवान का तो आप जानते ही काम है कि हर एक की भक्ति में भंग डालना, उसको ये शक्ति मिली हुई है। उमा के पास चले गए और जाकर के कह दिया, अरे उमा पागलों की तरह जो 12 साल तू ये भंग रगड़ती रहती, क्या मांगा तूने आज दिन तक, तेरे भगवान दुनिया का मालक बने फिरते हैं, क्या लिया तूने आज दिन तक। बुद्धि पर एक मिनट में पर्दा डाल देते हैं, यही माया का काम है और नारद को दे रखा ही। उमा की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। मैंने कहा बात तो तुम नारद भगवान ठीक कह रहे हो, मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, 12 साल बेवकूफों की तरह से बैठी बिजिया मांगती रहती हूँ, घोरती रहती हूँ, क्या मांगू। कहने लगे सुन, अभी भगवान 12 साल के बाद जब आंख खोलेंगे, शंकर भगवान जी उस बिजिया को लेने के बाद 12 साल तक बस ध्यान में मगन हो जाते हैं, किसके, अक्षर भगवान के, जो योग माया की शक्ति है, पारब्रह्म नहीं, ज्ञान के साथ। वो भेद आगे चल के खुलूंगा, अभी भविष्य पुराण की ही बात सुन लीजिए। तो क्या मांगो, कहने लगे भगवान से यही मांग लेना कि ए भगवान तुम जिसका ध्यान धरते हो उस परमात्मा का मुझे भी ध्यान बता दो, ताकि मैं भी उसका ध्यान धर के भवसागर से पार हो जाऊं। भाई इतना सा मांग ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, और को मैं तेरे से तुझे ये थोड़ा सिखाने आया हूं कि भगवान से माया मांग ले। अब उमा के देखो बात ठसके भी बात तो ठीक है, माया मैंने क्या करनी है, भगवान तो मेरी माया के मालक ही है, बाकी ये चीज मुझे मांगनी चाहिए। अब जब शंकर भगवान जी की सोता खुली तो उमा अपना वो तो पीज ही रही थी, उसको लेने के बाद उमा हाथ जोड़ के चरणों पे गिर पड़ी, कहने लगी हे भगवान आज दिन तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। शंकर भगवान सृष्टि के नाथ हैं, अंतर्यामी, समझ गए कि आज मालूम होता है नारद जी भगवान को चक्कर गए। कहने लगे हाँ उमा बोल भाई। कहने लगे भगवान एक तो मैं आपकी पत्नी, दूसरा आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, एक चीज मांगती है। मांग भाई क्या मांगती है। कहते ये बताओ तुम किस भगवान का ध्यान धरते रहते हो। मेरे भगवान तो आप है, मुझे किसी का धरने की जरूरत नहीं, पर ये बताओ आप जिस भगवान का ध्यान धरते रहते हो मुझे उसका नाम बताओ, मुझे भी उसका ध्यान धरना है, ताकि मैं भी उसका स्मरण करके भवसागर से पार हो जाऊं। मेरे साथियों किसी ने पढ़ना हो या तो शिव पुराण में पढ़ लेना, या अमर कथा में पढ़ लेना, या हरवंश पुराण, तीनों ग्रंथों के अंदर ये बात आती है जिसको हम लोग अमर कथा कहते हैं। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि सुन पार्वती उमा, तूने जो चीज मांगी है मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि तू मेरी पत्नी, तेरे से प्रिय भक्त मेरा और कौन संसार में है। पर मुसीबत ये है कि हमारा ध्यान जरूर वहां पे चला जाता है, आप ध्यान के साथ सुनना जरा, पर उसका ज्ञान जो है वो वर्णन करने की शक्ति, ये जो शरीर हमारा पांच तत्व वाला है, इस दुनिया वाला है, इसके अंदर उस ज्ञान को वर्णन करने की शक्ति उसने दी नहीं। यही बात तो राम भगवान ने कही रामायण में कि राम ना सके नाम गुण गाई। यही चीज तो ब्रह्मा जी ने वेदों में कहा कि नेति नेति मैं नहीं बता सकता, भाई था ही नहीं। ये नहीं है कि शंकर भगवान जी पार्वती को नहीं बता सकते, क्या विष्णु भगवान ये सहन कर लेते कि लक्ष्मी जी सात कल्पांत 86 युग, हम तो 1-15 मिनट के लिए भी ध्यान करने बैठे ना तो नहीं कर सकते, मत्था आएंगे देखेंगे प्रसाद भी शायद मेरे जैसे कहीं लेते होंगे या नहीं लेते होंगे। सात कल्पांत, कल्पांत पता कितना बड़ा होता है, 1000 बार सतयुग बीत जाए, 1000 बार त्रेता युग बीत जाए, 1000 बार द्वापर युग बीत जाए, 1000 बार कलयुग बीत जाए, तो एक कल्पांत होता है। सात कल्पांत 86 युग लक्ष्मी भगवती शेरा वाली विष्णु माता जिसको कहते हैं, अंबे जिसको कहते हो, जगदम्बे जिसको कहते हो, चंडी जिसको कहते हो, ये उसी एक के ही नाम है। वैकुंठ में तपस्या करती रही सिर्फ विष्णु भगवान से ये ज्ञान पूछने के वास्ते कि जिस पार ब्रह्म का तुम ज्ञान ध्यान धरते हो मुझे भी उसका ज्ञान बताओ। उन्होंने भी यही ज्ञान जवाब दिया। देवी भागवत 4th अध्याय, हर ग्रंथ का नाम भी बता रहा हूं, ध्याय भी बता रहा हूं कि कोई बहन या भाई पढ़ना चाहे जाके पढ़े, ना लिखा हो हमें कहे हम दिखाएंगे, मेरे पास सब ग्रंथ रखे, यहीं पर रखे गुड़गांव में, लेने नहीं जाना पड़ेगा कहीं, आपको दिखा सकते। नहीं बता सकते क्यों, ये ज्ञान था नहीं दुनिया में, तो बताते वो कहां से ला करके ये ज्ञान देते। अब ये चीज यहां से शुरू होती है सतयुग के अंदर। शंकर भगवान जी से उमा ने ये ज्ञान मांगा कि प्रभु मुझे तो ये चाहिए। उन्होंने कहा देख उमा, अवल तो तूने आज दिन तक कुछ मांगा नहीं, आज तुमने ये वो चीज मांग ली जिसको मुझे देने का अधिकार शक्ति मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी अब जब तुमने मांग ही लिया है, पर मैं ये तुझे बता देना चाहता हूं, वो ज्ञान में वर्णन तो जरूर कर दूंगा। कैसे, कि मैं ध्यान मगन होकर के जब मेरी सुरता उधर जाएगी, जो जो कुछ मेरी सुरता, जो जो कुछ मेरी आत्मा, जो जो कुछ मेरा ध्यान वहां देखेगा, वो मैं बोलता चला जाऊंगा, पर तू सुन सकेगी नहीं। ध्यान के साथ उमा जो सृष्टि की नाश है उसको कह दिया कि तू सुनने के पात्र नहीं। कहने लगे भगवान क्यों, कहने लगे इसलिए कि तेरे अंदर आत्मा नहीं है, तेरे अंदर माया का बोलो जीव है, और जीव वैकुंठ से आगे जाने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए वो ज्ञान नहीं सुन सकेगा। कहने लगी प्रभु जब आपने इतनी कृपा कर दी, मेरे ऊपर इतने दयालु हो ही गए, सुनाने के लिए तैयार हो गए हो, तो कोई यत्न ऐसा कर दो, कोई रास्ता ऐसा भी निकाल दो कि मैं उसको सुन सकूं। कहने लगे अच्छा फिर ऐसे कर, मैं अब ध्यान में बैठता, मैं बखान करना शुरू करूंगा, तू सुन करके आगे से हूं का आवाज, जैसे अपन लोग किसी को कोई कहानी या स्टोरी सुनाते हैं तो अपन लोग पंजाबी लोग आगे से हुंकारा जिसको बोलते हैं, हाँ फिर हाँ फिर हाँ हाँ, मतलब आवाज देते हैं, तो कहने लगे कि तू उसको सुन करके आगे से हुंकारे की आवाज हाँ हाँ की देते जाना, तो तेरी आवाज मेरे कानों में आती रहेगी, तो मैं समझता रहूंगा कि तू ज्ञान को बराबर है सुन रही है, तब और जब तेरी आवाज आनी बंद हो जाएगी तब मैं ज्ञान सुनाना बंद कर दूंगा कि तू सो गई है। ठीक, अब शंकर भगवान जी ने ज्ञान शुरू किया, क्या सुनाया पहले सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका व्याख्यान इसके अविस्तार फिर किसी दिन सुनाएंगे, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा, 9:30 तक चलाना ना बोले, 5 मिनट बाकी है सर, 5 मिनट के अंदर इस प्रसंग को पूरा करता हूं। के हे ये सृष्टि कैसे बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे पैदा होते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं,
उनके जिम्मे और कोई काम नहीं। हम रोज कहते हैं ना, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। ये सारा विभाग किसके हाथ है? ब्रह्मा जी। पालने पोसने का जो काम है कर्मों के हिसाब से, सब के कंप्यूटर वहां वैकुंठ में लगे हुए हैं। धका धक यहां कर्म करते जाओ, वहां लिस्ट तैयार होती चली जाती है। वो विष्णु भगवान जी के पास पालने पोसने का कर्मों के हिसाब से फल, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बादशाह है, कोई रंक है, ये कर्मों का फल और कुछ नहीं। कोई मन सोचे मैंने इतना कमा लिया, मेरा बिजनेस इतना बड़ा स्टैंड हो गया, कोई समझता यार काम तो अच्छा किया था, फेल हो गए, नहीं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बैंक बैलेंस है जो देते हैं ये विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी पाल के पोसते हैं। और संघार सृष्टि का लय करने का काम, बीमारियां लाना, भूकंप लाना, मार देना, लय कर देना, ये शंकर भगवान जी, ये तीनों के पास तीन कार्य हैं। ये पहले सृष्टि की रचना और कर्मों का फल बताया। करोड़ जन्म तक रामायण पढ़ी, तीसरा स्कंद पढ़ लेना। आदमी जी, इंसान का तन जब लेता रहता है तब कहीं जा करके भगवान की भक्ति नसीब होती है। ध्यान के साथ सुनिए, फिर करोड़ बार यदि वो भक्ति करता रहता है तो राम की भक्ति नसीब होती है। फिर करोड़ बार जब राम की भक्ति कर करके जन्म लेता है तब कहीं जाकर के कृष्ण नाम सुनने को मिलता है। अब कृष्ण का नाम तो सारे सुनाते ही हैं, लेकिन हकीकत में श्री कृष्ण है कौन, उसकी व्याख्या आगे चल के। अब उसके बाद है उमा, जो कृष्ण को बिन स्वार्थ निस्वार्थ भाव की भक्ति से सुमरण करता है वो वैकुंठ तक चला जाता है, और उसके आगे महाशून्य प्रलय हो जाती है। यहां तक तो उमा सुनती रही और हूं हूं करती रही। आगे बताने लगे कि आगे जो है, अब आगे क्या है, जिसका वर्णन गीता में बताया है, अर्जुन मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी अपरा। दो शब्द है जरा जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये जरा ध्यान में रह जाएगा तो फिर इस ज्ञान को समझना आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। जिसका नाम है काल माया और योग माया। काल माया तो है ये अपराशक्ति, और योग माया क्या है? पराशक्ति। फर्क क्या है कि यहां ये तन विकारों से भरे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, भोग विलास, भूख, गरीबी, कमाई करना, धरना, ये जो कुछ भी दुख है ये यहां है। और योग माया में ना कोई जन्मता है और ना कोई मरता है, ना खाना पड़ता है ना पीना पड़ता है, क्योंकि तत्व एक नूर वही है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक तत्व करते हो आज की भाषा में, ताकि हर कोई समझ जाए। वहां इलेक्ट्रॉनिक तत्व है, नूरमयी तत्व है। बस जब वहां का वर्णन ही अभी शुरू किया तो उमा जी को नींद आ गई, जीव नहीं सुन सका। ये वो वाणी है जिस ज्ञान को उमा नहीं सुन सकी। अब अपने आप को आज नसीब को तोल करके देखो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है उसकी, हम बैठ के सुन रहे हैं। इस ज्ञान की पात्र उमा नहीं हुई, जाकर के पढ़ो ग्रंथों में, नहीं सुन सकी, नींद आ गई। वहां एक तोता का अंडा रखा हुआ, उस अंडे ने ये सारी कथा सुनी, क्योंकि अंडे के अंदर जीव होता है। लोग भले कहते रहे जी अंडे के अंदर जीव थोड़ा ही होता है, खा लो, ये तो वेजिटेरियन है, ये तो डॉक्टर कह रहे हैं, अरे बच्चों की हेल्थ कैसे बनाए। लेकिन मां भारत में ये तो नहीं लिखा था कि भीम अंडे खा करके बना था, और उसने हाथियों की दुम को पकड़ करके यूं फेंक दिया था, लौट करके आज दिन तक धरती पर नहीं आया। आज कोई अंडे खाने वाला जरा पांच शेर का बाट भी दीवार पर फेंक के तो दिखाए। अंडे खाने से रक्त पशुओं वाला होता है, बुद्धि पशुओं वाली हो जाती है। अब अंडा पड़ा है वहां तोते का, उसके अंदर जीव था, उसने ये सारी सृष्टि की रचना, कर्म कांड, 84 लाख योनि, कैसे मनुष्यत्व प्राप्त होता है, सारा ज्ञान सुन लिया। अब सुन करके भाव सागर से पार होने वाला जहां पराशक्ति का ज्ञान सुनाया, वही फड़क से अंडा फटा और तोता निकल के बाहर बैठ गया। अब आप सब जानते हो कि आदमी की भाषा और तोते की भाषा में कोई खास अंतर होता नहीं। जैसे उमा कर रही थी हूं हूं, वो तोते के अंडे ने करना शुरू कर दिया। तोते का पक्षी जो बच्चा निकला ना बाहर, जिसको कहते हैं सुख, सुख संस्कृत का शब्द है, सुखदेव मुनि जहां से पैदा हुए वही सुखदेव मुनि का जन्म वहीं से होता, वही कारण बनता है सुख कहते हैं संस्कृत में तोते को। अब उसने सुनना शुरू कर दिया और पराशक्ति का सारा ज्ञान क्या है इसका विस्तार कल करेंगे, बता देता हूं। सारा ज्ञान सुना, अब वहां पार ब्रह्म अक्षरातीत के इधर आने का कारण क्या था, यह सूचना वहां ऊपर से मिली। शंकर भगवान जी को सबसे पहले यह सूचना ध्यान में जब लगे हुए थे तो अक्षय ब्रह्म ने सूचना दी कि ऐ शंकर भगवान, सृष्टि में जाकर के सारे ग्रंथों में यह लिखवा दो कि 28वें कलयुग में पर ब्रह्म और मैं उनके साथ दुनिया में आ रहा और आऊंगा भारतवर्ष में, और उसके भी प्रमाण लिखवा दिए कि किस जगह पर आऊंगा। पद्मावती के सरिते मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यन्ति कलयुगे, जिसको हम लोग पन्ना जी कहते हैं। तब से कह दिए कि किलकला नदी के किनारे जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल, गवर्नमेंट भी हार गई थी, अंग्रेज भी, और ये भी हार गई, गाड़ी नहीं जा सकती, ताकि कलयुग का वास वहां ना हो, शान पहाड़ी ही पहाड़ी। उस किलकला नदी के किनारे पार ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति आकर के अपना नूरी झंडा बनाएगी, राजधानी बनाएगी, अपनी आत्माओं को दुनिया में दुख की लीला दिखाने के लिए वो उतरेंगे, सारा भविष्य का ज्ञान ला करके बता दिए। अब वो यहां से छुपाई शुरू हो रही है भविष्य पुराण में। राजा कहे यो विचार, अब जब ये बातें सुन कह दी गई तो तब सुनता रहा। अब उमा जी सो रहे हैं, एकदम बात खत्म करने के बाद आंख जो खुली विष्णु शंकर भगवान जी की, तो देखा तो उमा तो सो रही है अभी उमा। अब जब उमा को हिलाया, जाग खुली, एकदम घबरा गई, प्रभु तेरा भाग्यवान, तुझे तो मैंने सारा ज्ञान सुनाया और तू सोती रही। तो दाहिनी तरफ देखा, देखते साथ ही ब्रह्म ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है कि उसी वक्त सुखदेव मुनि के किशोर रूप 16 साल की आयु जैसा एक युवा अवस्था का नौजवान वहां उत्पन्न हो जाता। अब शंकर भगवान जी त्रिशूल लेकर के उसको मारने के पीछे भागे। जिसने ये प्रमाण देखना हो, श्रीमद् भागवत पहला ग्रंथ पहला अध्याय पहला श्लोक, जिसके पास भागवत ना हो सवेरे आ जाना, दिखा दो पहले अध्याय का पहला श्लोक। वो सुखदेव मुनि जी आगे आगे और शंकर भगवान जी पीछे पीछे मारने के वास्ते, कि अगर ये ज्ञान दुनिया में जाकर के जाहिर कर देगा तो दुनिया वालों को पता लग जाएगा, तो हमारी क्या कीमत रहेगी, मारने के वास्ते उनके पीछे भागे। अब उन्होंने ज्ञान सुन लिया, पराशक्ति का अखंड ज्ञान सुन रखा है, इसलिए उन्होंने अपना सूक्ष्म तन धारण किया और व्यास जी के घर पत्नी उनके ने उबासी ली, जो शास्त्र में लिखा है, सूक्ष्म रूप से उनके पेट में जाके समा गए, पेट में बैठ गए। शंकर भगवान जी 12 साल तक व्यास जी के दरवाजे पर बैठे रहे कि अब ये इसके घर बच्चा पैदा होगा और इसको मैं मारूं, क्योंकि इसके पेट में क्या है तो बच्चा पैदा होगा और इसको मैं मार के जाऊं। तब विष्णु भगवान जी ने नारद को भेजा कि जा शंकर भगवान जी को समझाओ मूर्ख क्यों हो गए, अरे पैदा होगा तो जाएगा कहां, अपनी दुनिया में ही तो रहेगा, जब पैदा होएगा तब मार लेना, क्यों वहां पड़े तकलीफ में हो, आ जाओ वैकुंठ में वापस, जब पैदा होगा मार डालेंगे। तब शंकर भगवान जी वापस गए और सुखदेव मुनि जी ने जन्म लिया। पहला श्लोक आप ध्यान से सुनिए, पहला श्लोक क्या है, सुखदेव मुनि जी ने जब जन्म लिया, अब वो तो योग माया की शक्ति थी, जन्म तो बच्चे का लिया लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद वही रूप 12 साल का हो गया किशोर स्वरूप। अब सुखदेव मुनि जी आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे भागे। पुत्रम पुत्रम पुत्रम, पहला श्लोक खोलो भागवत और पढ़ो, यहां से भागवत शुरू, यह है भागवत का पहला श्लोक। व्यास जी जो कि इतने ग्रंथों के लिखने वाले थे, क्योंकि उनके घर संतान नहीं थी, पुत्र पैदा हुआ, पुत्र की खुशी में पीछे भागे, पुत्रम 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 पुत्रम। तो योग माया की शक्ति के द्वारा वृक्षों ने उत्तर दिया, ओ व्यास, तू दुनिया का कल्याण करने चला है, तू ही अभी अभी मोह में बच्चों में फंसा हुआ, ये तेरा लड़का है क्या? किसके मुंह में फंसा? लौट जा वापस, ये सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अवतार हुआ है, ना कि तेरा पुत्र बनने के लिए आया है। तब व्यास जी शर्मिंदा होकर के वापस आए और उस ज्ञान के अंदर ये कहा किसने? शिव जी ने। और सुना किसने? सुखदेव ने। और फिर लिखवाया किसके द्वारा? व्यास जी के द्वारा। पार्वती जी ने फिर जब ये ज्ञान सारा सुना तो पूछा प्रभु वो आएंगे कब? कहने लगे भाई कलयुग में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। कहने लगे जी कलयुग को कितना समय है? कहने लगे हैं अभी है भाग्यवान सतयुग, सतयुग के 17 राजा जब सृष्टि पे राज कर लेंगे तब आएगा त्रेता युग, और उसमें 29 राजा जब राज कर लेंगे तब आएगा द्वापर युग, और द्वापर युग में जब 19 राजा धरती पर राज भारत वर्ष में कर लेंगे तब आएंगे कलयुग, और कलयुग का 20वां बादशाह जब आएगा तो सबके नाम भी बता दिए। पार्वती ने पूछा जी उनके नाम बताओ? शंकर भगवान जी सृष्टि के नाथ है, कण कण के जानने वाले हैं, सबके नाम बता दिए कि कलयुग में जब 20वां बादशाह औरंगजेब आएगा उस समय वो अवतार दुनिया में आएगा और उनके साथ उनकी आत्माएं आएंगी। क्या लाएंगी? जहां से वो आएंगे वहां का ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा। जो ज्ञान पार्वती नहीं सुन सकी, जो ज्ञान राम भगवान नहीं कह सके, जो ज्ञान वेद नहीं कह सके, अब इसका यह मतलब तो नहीं कि हम वेदों की निंदा कर रहे हैं, अब इसका यह मतलब तो नहीं कि हम वेदों की निंदा कर रहे हैं। भाई जब ज्ञान था ही नहीं तो शंकर भगवान जी क्या करते? जब ज्ञान दुनिया में उतरा ही नहीं था तो ब्रह्मा जी ज्ञान लाते कहां से? जब ज्ञान था ही नहीं दुनिया में तो दुनिया के गुरु भी लाते कहां से? इसलिए सब ग्रंथों ने पुकार पुकार के क्या कहा कि 28वें कलयुग में वो आएंगे और आकर के स्वयं अपना ज्ञान सुनाएंगे, दुनिया को देंगे। जो दुनिया सुन के समझ करके अपनी आत्मा का संबंध उनके साथ जोड़ लेगी और उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा वो प्राणी भवसागर से पार हो जाएगा। ये ज्ञान भविष्य प्राण में लिखा है। अब कैसे चला आगे ये अब बाकी का कल सुनिएगा। भविष्य पुराण में जरूर नहीं क्या हो गया नहीं? बहुत टाइम हो जाएगा, लेट नहीं करना, टाइम पर ठीक है। भविष्य पुराण में चुपाई दरा दो, भविष्य पुराण में।